भजन के अनुपात में दीनता जरूर रहेगी। भजन करेंगे और अहंकार रहेगा तभी भजन। दीनता स्वभाव, जितना ही प्रेम ऊंचा चला जाएगा दीनता स्वाभाविक रूप में उसकी उतनी ऊंची दीनता है। भजन अनेक, प्रेम और दीनता दोनों पर्यायवाची एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसा समझना चाहिए। हम लोग को कभी कभी दीनता दे, आप बड़े साधु हैं, हम तो कुछ नहीं, माने हम क्या करते हैं, हृदय में भावना एक और ऊपर से दूसरा करते हैं। ये दिन यथार्थ में दिन किस लिए दीनता? एक तो हम क्षुद्र जीव हैं, भगवान विभु है, हम हैं, और ये क्षुद्र होने के नाते हम माया के में बद्ध हो पड़े हैं, और हम समझते हैं कि हम एक एक आदमी जितने आदमी हमारे जैसा और कोई बुद्धिमान नहीं है, सभी समझते हैं हमारे जैसा। हाँ कुछ श्लोक याद हो जाता है या कुछ बुद्धि इधर उधर, किंतु मैं सबसे बड़ा बुद्धिमान, नहीं तो किसी का अनुगत्य करता। अनुगत्य में यही चीज बात रखते थे, मैं बड़ा बुद्धिमान, मैं जो समझता हूँ ये नहीं समझ। एक चींटी हमको काट लेती है, क्यों काटती है, क्यों काटती है बतलाओ? वो अपने को बुद्धिमान समझती है, बुद्धिमान समझ करके काट लेती है, उसका विपरीत भाव होता है ना, नहीं तो नहीं काटती। यदि अनुगत भाव होता ना, एक छोटा सा बच्चा है मैया ने उसको मारा, और वो यदि थोड़ा सा क्रोधित भाव होकर के घर से चला गया, क्यों चला गया? उसका विचार और उसका विचार एक में मिला नहीं, इसलिए उसको छोड़ करके चला गया। और कोई बच्चा ऐसा भी होता है जो मारा तो रोते रोते मैया की गोद में ही जाएगा, वो उन्हें हटाती है और फिर ऐसा होना चाहिए। यदि भगवान को दंड देते हैं गुरु वैष्णव लोग दंड देते हैं, किंतु उनके अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं, क्या जब भूमि में गिर जाएंगे, ऐसा यदि हो तब तो होगा भजन। तो इसलिए यहाँ पर कदा बोलो कैसे भक्तों में ऐसी भावना आनी चाहिए, मैं बहुत तुच्छ जीव हूँ, माया के द्वार में ग्रसित हूँ, और अपने को मैं बुद्धिमान समझता हूँ, योग्य समझता हूँ। यह बात की साधु संघ रूपी बल नहीं है, बल कौन काम करता है? साधुओं का संघ ही बल करता है। हम लोगों में न कोई ज्ञान है न कुछ है, हमने जो कुछ ज्ञान बुद्धि कर्म भक्ति जो कुछ भी सीखा कुछ मुझ में हुई है, कहाँ से आया? दूसरे के प्रभाव से तो आया, नहीं तो हमारे अंदर में कुछ नहीं। एक आदमी को एक बच्चा जन्म लिया और उसको छोड़ दो, किसी का संग न मिले तो क्या होगा? उसकी बुद्धि का विकास होगा? बुद्धि का विकास में दूसरों के विचारों को लेकर के अपनी बुद्धि को हम विकसित करते। साधु संघ रूपी बल, साधु संघ नहीं होगा हरिभजन नहीं, यह निश्चित है। जितने हम लोग सिद्धांत में प्रतिष्ठित होंगे, विचारों में प्रतिष्ठित होंगे, साधुओं के प्रति ये भाव आएगा, संतों के प्रति, गुरु के प्रति, वैष्णवों के प्रति, शास्त्र के प्रति ये भाव आएगा। तो हमें वो बल नहीं है, इसलिए हम लोग दीनहीन हैं, ऐसा भाव आना चाहिए, किंतु नहीं आता। हम सोचते हैं कि हम अपने से सब कुछ कर लें, इसलिए दीनता का भाव नहीं आता। प्रभु भी प्रसन्न नहीं होते, वो अपनी वो कृपा नहीं देते। तो कदा अवलोक से, कब आप मुझे दर्शन देंगे? हृदय तद आलोक का कर्म दैत भ्राम्य किन कर्म में हम, हे दैत, हे प्रिय, हे प्राण के प्रियतम, मैं तुम्हें दर्शन न करने के कारण हमारा हृदय भ्राम्यति अस्थिर हो रहा है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, क्या करूं, उसी के लिए बतलाया है। मैंने किम कृणोमि लिखी क्या है,
किम कृणोमि
किमी कृणोमः कस्य ब्रह्मः कथम कथम आशया कथयत कथमान्यं धन्या महो हृदयाशेष मधुर मधुर स्मेराकारे मनो नयनोत्सव कृपण कृपण कृष्णे तृष्णा चीरम वतलम देते। मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या कहूँ, किससे कहूँ, कौन मेरी बात पर विश्वास करे, इसमें भक्तों को ऐसी जब तक उसके लिए विरह ना हो, आतुरता ना हो, कंठा ना हो, ऐसे भावना नहीं हो तो भगवान अपनी कृपा क्यों देंगे। गोपियों को छोड़ करके चले गए किस लिए, इसी चीज को बढ़ाने के लिए। जब उनके लिए ऐसा करते हैं तो हम बद्ध जीवों के लिए क्या। इसलिए भजन करते हुए नाम करते हुए ऐसी भावना हृदय ऐसे श्लोकों को पढ़ना चाहिए। हे देव हे दैत हे भुवनई कबंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणई कृष्ण हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभविता। कहते हैं माँ प्रभु जी से प्रार्थना कर काल कलील बलीन इंद्रिय वैरी वर्गा श्री भक्ति मार्ग यह अकंटक पूर्ण अनुद्धार हा हा कुजा विकलम किम अहम करोमी चैतन्य चंद्र यदि यदि हे प्रभो हे करुणा के अवतार हे राधा भाव को लेने वाले और उनकी कांति लेके लेने वाले कृष्ण जो आप बहुत सुंदर थे सची नंदन है हमारे ऊपर में यदि आप आज ही नहीं कृपा करें तो मेरी क्या दशा होगी। इस पर दस कृपा काल कली आजकल काल कैसा है कली माने क्या कलह लाती थी कली बात पर बात में कलह होता है बिना बात आप चले जा रहे हैं एक ठेले वाला वहां पर खड़ा है रास्ते बहुत काल तो आप कहेंगे जैसे तुमने धक्का क्यों मारा और वो कहेगा जी आपने क्यों धक्का मारा और ये तुमने रास्ता पर ये क्यों रखा तो तुम कांख नहीं जो उधर से दे करके चलता बिना बात का बात हो करके झगड़ा हो करके परसों मारा पीटी और ये सब कली ऐसा ही इस तरह से कली का काल कली बात बात में विवाद सबसे विवाद काला कली बलीन इंद्रिय बैरी वर्ग और हमारी इंद्रिया बड़ी बलवान है इतनी बलवान है जब जैसा चाहेंगे मन के इच्छा के विपरीत भी उस काम में लगा दें सब लोग सब कुछ का मन को कंट्रोल करना बड़ा भारी कठिन है और ये मन ही कारण बंध का कारण और मोक्ष का कारण मन एवं मनुष्याणां कारणं मोक्षं ये मन ठीक हो जाता तो भजन भी हो जाए मन ठीक ही नहीं होता तो ये काल एक तो इतना और महा ये इंद्रिय वैरी वर्ग महा है महान सब बड़े बड़े उनको वशीभूत नहीं किया सबसे बेसी ये बोली बोली के वजह से है लंगड़ी लूली जैसे कुब्जा थी ना वो कैसी थी
त्रिवक्रा
किंतु उसकी जीभ कैसी थी बड़ी ऐसे ही इसमें हाड़ नहीं लूली है जीभ बड़ी तेज है एक मिनट में न जाने क्या करा देगी प्रलय करा देगी। लक्ष्मण जी से इस जीभ ने कह दिया सीता जी की जीभ ने और तुम हमको चाहता है राम मर जाए चाहता है तू राम के लिए बुला रहे हैं तू जाएगा नहीं तुम अपनी भार्या मुझे बनाना चाहता है कदापि नहीं होगा मर जाऊंगी बीज खा लूंगी मरी ये तो देखो तो मैं इसके लिए इतना करता मैया समझता हूँ और हमारे लिए ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग कर रही है जो होगा जो हो अब तो मैं चाहता बस उनको एक ऐसा किया दाग दे दिया मिट्टी रेखा फेंक दी और चले गए। राम ने कहा ये क्या किया तुमने सीता कहाँ है तो सीता तो वहां पर है क्यों चले आए तो उन्होंने ऐसा मेरे लिए कहा तो जानता नहीं ये विवश नारी है अबला नारी उसको छोड़ करके तुम चले आए जरूर कुछ अनर्थ हुआ चलो यहाँ आए तो देखा जी सीता जी अब डकर डकर कर लक्ष्मण जी को ये भी नहीं कहते तुम्हारे वजह से ऐसा किंतु भावना तो है ये छोड़ करके चला आया उस पर मैं। ये इतना बड़ा भारी रामायण का जो महाभाव ये हो गया किसके लिए हुआ? जी पर बोल दो, अनाप शनाप मत हो, यदि भगवान का भजन करना है अपनी डिग मत मारो, कभी डिग मारना भी मृत्यु है, डिग मत मारो, डिग क्या मारेगा तुम जीव छोटा सा, एक मन ही को नहीं कंट्रोल कर सकते, इसलिए डिग मत मारो भजन करना है। और जीवा पर कंट्रोल रखो, यदि जीवा पर कंट्रोल रख लिया तो बाकी सब इंद्रिया तुम्हारे अधिक, और यदि बाकी इंद्रिय नहीं यदि हुई तुम कुछ नहीं कर सकते, इसे क्रोध इत्यादि सब कुसम भगवान का भजन भी सुख से कर सकते, किंतु यही बड़े व्यंग, इसलिए इंद्रिय बैरी वर्गा श्री भक्ति मार्ग यह कंटक कोटि उद्धार, कोटि कोटि कंटक है, हे प्रभु आज आप दया नहीं करेंगे हमसे तो भजन, इतना तो दीनता तो चाहिए नहीं किंतु दीनता है नहीं, इसलिए दीनता के लिए कर रहे हैं, ऐसी दीनता होनी चाहिए भजन में, तब ये भजन संभव है। आज यही
कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपाय नोभिरहकार्तव्याजिनो पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेतु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानं कवैवास्मि नदिगामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे प्रणमामि।
सप्तम स्तर के साधन भजन के संबंध में चल रहे हैं, कल हम लोग वर्णन कर रहे थे साधक को अनुभूति हो कि हमारे कारणों से ही हम भगवान का दर्शन नहीं पा रहे, इसमें कारण दूसरा कुछ नहीं कोई नहीं, हम ही उसके लिए कारण, हमारे कर्म ऐसे हैं, हमारा भजन ठीक नहीं है, कुछ विघ्न बाधाएं हैं, एक तो कली का केवल कलह का ये केवल, और दूसरा हमारी चित्तवृत्ति भोगों में रहती है, तरह तरह के अनर्थ भरे पड़े हैं, इसलिए भगवान का भजन नहीं, और इसीलिए भगवान दर्शन भी नहीं। पहले तो ऋषि मुनियों का भी दर्शन हो जाया करता था, द्वापर युग तक सुना जाता है नारद जी आए, कंस से भेंट किया, वसुदेव महाराज से किया, प्रहलाद से मिले, ध्रुव के घर जहाँ पर भजन कर रहा था वहाँ चले गए, साधु संत लोग उपलब्ध थे, बिना कारण के किसी वो लोग वहाँ पर चले जाया करते, उनको उपदेश दिया करते, उनको उत्साह देते भजन में प्रवृत्त होना, कलिकाल में ये भी संभव नहीं, लोगों को साधु संतों से विरक्ति हो गई है, क्योंकि अधिकांश साधु जितने भी हैं और मुनि कहने वाले भ्रष्ट लोग हो गए, बहुत कम लोग हैं जो सचमुच में भजन करते हैं, सब चीज का व्यवसाय होने लग गया, ठाकुर जी की मूर्ति की भी व्यवसाय, भागवत का भी व्यवसाय, कीर्तन का भी व्यवसाय, भजन के लिए नहीं ये सब चीजें, इसलिए लोगों पर किसी पर विश्वास नहीं रहा, ये भी भजन करने लगे, सबको एक ही समान समझ लिया, किंतु हाँ अभी भी हैं। तो सब साधन भजनों का मूल ये है कि कृष्ण के चरणों में हमारी प्रीति हो, राधा जी के चरणों में, ब्रजवासियों के चरणों में हमारी प्रीति, यदि ये नहीं है भजन के द्वारा पैसा उपार्जन करें ये है, या भजन के द्वारा हम संसार में सुखी रहें, हमारा रोग दूर हो जाए, हम बड़े अशांति से हैं इसलिए भजन करने से शांति हो जाए, भाई इसके लिए भजन मत करो, जब ये जन्म इस संसार में हुआ है संसार से दुख को कोई नहीं मिटा देगा, ये कारागार है, कारागार में ये समझेंगे हमको कूलर मिल जाए, खाने के लिए सड़रस भोजन मिल जाए, आराम से सोएंगे 9 बजे तक, और बड़े प्रेम के साथ में रहेंगे तो कारागार में आए क्यों? कारागार इसलिए नहीं है कि आराम से सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे और शांति से रहेंगे। वहां जाने पर पुलिस अपने पैरों से, जूतों से ठोकर मारेगा, गाली देगा, गलौज करेगा, लपसी खाने को मिलेगी, चक्की भी चलवाएगा, तरह तरह के दुख होंगे। यहाँ पर भी इस संसार में हम अपने को समझते हैं कि सुखी हो जाएंगे, ये संसार में रहते हुए कोई भी सुखी नहीं होने देंगे, भगवान की ये माया सबको पीस रही है, किसी न किसी रूप में वो सबको पीसेगी। इसलिए संसार में सुखी वही कोई हो सकता है ये संसार के दुखों को, सुखों को, दोनों को एक समान समझ करके किसी से जरूरत नहीं है, हमको भगवान के भजन करने से जरूरत है, बस यही आदमी सुखी है, दूसरा सुखी नहीं। संसार के लोग कहेंगे सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद नहीं और क्या से? मंगलम भवतु, पुरुषों के लिए कहेंगे मंगलम भवतु और स्त्रियों के लिए क्या कहेंगे?
अखंड सौभाग्यवती भव,
सौभाग्यवती। क्या इस जगत में क्या लोग सौभाग्यवती हैं? सौभाग्यवती वही होगा जिसके पति कृष्ण है, जिन्होंने कृष्ण को ही अपना सर्वस्व बना लेते हैं, नहीं तो आज न कल न वर्ष में न 100 वर्ष में 150 वर्ष में ये सबको जुदा हो जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान का भजन करना सबके लिए जरूरत, तो ये अनुभव करे भजन करते समय हमारा मन नहीं लग रहा, हमको इतनी विघ्न बाधाएं हैं, क्या हो इतनी विघ्न बाधाएं हैं आप चले से, भगवान में मन नहीं लगता। भगवान के लिए बेटा कहीं चला जाता है ना दो दिन के लिए तो दुख होता है कि कहाँ गया, किंतु भगवान इतने दिन नहीं मिले उनके लिए कोई दुख नहीं है। ये भगवान का भजन करते समय ये यदि आज भगवान का दर्शन कब होगा, आज तक मिले नहीं इतने दिन हो गए, कब मिलेंगे, तब इसको करते हैं भजन। और ये है नहीं कोई बैराग्य आया नहीं, इतना दिन भजन किया कोई बैराग्य ही नहीं आया, तब क्या समझो ये बेकार का ये भजन ही। भजन करने का ये संसार से मन उसका थोड़ा सा विरक्त होकर के भगवान के चरण में जाने लगेगा, संसार के लिए अधिक चिंता नहीं करेगा, भगवान की सेवा कैसे प्राप्त हो, उनका दर्शन कैसे हो, इसके लिए उसके हृदय में टीस सी जाए, इसलिए उसको विरक्ति हो जाए। इसलिए कहते हैं कल ये बताया गोपियां कह रही हैं जैसे विरह में जब कृष्ण मथुरा चले गए तो ऐ दीन दयाद्रनाथ हे मथुरा नाथ पदावलोक्य से हृदय तद आलोक का तरम दई भ्राम्य किम कर। प्रत्येक साधक ये समझेगा भगवान के लिए विरह हो कि आप कैसे मिले। अभी हम लोगों को यही समझना चाहिए हम ब्रज में हैं, कृष्ण चले गए कहाँ, द्वारका, द्वारका से चले गए मथुरा, अब उनका दर्शन नहीं लगा, इसके लिए तड़पन मिल रहे हैं। यदि किसी को ये नहीं है, बड़े सुख से आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं और आराम के साथ में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और संसारी को दुख होने पर भी बिलाने लगते हैं, ये भगवान का भजन का तरीका है। ये सब दुख इसीलिए है कि भगवान का हम भजन नहीं करते, इसलिए भगवान को प्रेम के साथ में करना चाहिए, दुख अनुभव करना चाहिए कि भगवान हमको नहीं मिल रहे हैं। इसी चीज को श्रीमद् भागवत से दिखला रहे हैं श्री भक्ति विनोद ठाकुर, अहो विधास्ता विधातक तन कचित दया संयोज्य मैत्रा प्रणयीन देहिन तांस्य अकृतार्थान वियुनक्ष्य पार्थकम विचेष्टितम ते अर्भक चेष्टितम यथा। करें ये प्रसंग है श्रीमद् भागवत के 39वें अध्याय का, जिस समय में अक्रूर जी गए हैं ब्रज में, कंस ने उनको प्ररोचित किया, कंस ने अक्रूर से कहा आप हमारे चचा जी हैं, आप हमारी कुछ सहायता कीजिए, ये जो कृष्ण और बलदेव जो हैं, हमको ऐसा पता चला है कि ये वसुदेव जी के लड़के हैं और देवकी के, यही आठवें गर्भ का ये लड़का है। और किसी प्रकार से छल बल करके ये चला गया वहाँ ब्रज में और वहाँ पर पालित पोषित हुआ। उसी के हाथ से हमारी मृत्यु लिखी है। तुम हमको बचाओ मेरी सहायता करो। मैंने कहा जैसे जरूर आपकी रक्षा हम सेवा करेंगे, आप जो कहिए मैं करूंगा। तुम्हें एक बात करो, और किसी पर हमारा भरोसा नहीं है। आप वृद्ध हो गए हैं, बड़े बुद्धिमान हैं और हमारे शुभ चिंतक हैं। मैंने सदैव आप पर भरोसा किया, इसलिए आप ऐसा कीजिए कि आप चले जाइए ब्रज में और वहां जाकर के जो कृष्ण और बलदेव हैं चतुराई के साथ में कल यहाँ पर ले आइए मथुरा में। अभी हम लोग यहाँ पर हैं, इसको कहते हैं कंस टीला है। यहीं पर अखाड़ा था उसका, अखाड़ा तो था भूतेश्वर में, किंतु यहाँ पर प्रशस्त जमीन जमुना के किनारे पड़ी हुई थी, पासी में जमुना बह रही
थी
और यहाँ पर विशाल जगह थी। इस जगह में यहाँ पर ऊंचा एक बनाया गया रंगशाला। रंगशाला कहते हैं कि यहीं पर कोई महोत्सव होगा, कुश्ती होगी, दंगल होगा, लोग सब आएंगे। तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि कृष्ण को कैसे मारा जाए। अकेला जो कोई असुर उनको मारने के लिए जाता है ब्रज में, वो लौटता नहीं है, खबर देने के लिए भी नहीं आता ये क्या किया। इसलिए यहीं पर बुला करके सभी लोग मिल करके उसको मारेंगे। इसलिए तुम जाओ और नंद बाबा से कहो और उनके बच्चों से, जो कल यहाँ शंकर जी यहाँ पर है रंगेश्वर महादेव, उनके उपलक्ष्य में, सेवा के उपलक्ष्य में यहाँ पर दंगल होगा और उनकी पूजा होगी। इसलिए तुमको उन्हीं के बहाने में बुला, यहाँ पर आकर के हम लोग व्यवस्था करेंगे। अक्रूर जी गए, कहिए आप तुम्हारे मरने में अब देरी नहीं। सांप एक पड़ा हुआ था, अब तुमने लेकर के उस सांप को
गले में लगा
लिया, गले में लपेट दिया और उसको छेड़ दिया, तो वो सांप क्या करेगा? और काटेगा तो यहाँ अब बचेगा नहीं। तुम जगह में सर्प को जो दूर में खेल रहा था उसको तुमने बुला करके और अपने गले में उसको धारण कर लिया, अब तो तुम्हारा मरना नहीं। ये सोच करके जब ठीक है तब तुम मरने ही पर लगे हो तो मैं क्या करूंगा, तुम तो अब मैं नहीं जाऊंगा, दूसरा कोई जाएगा। तो हमारा यह सौभाग्य है कि कृष्ण और बलराम जो ईश्वर हैं, हमारे आराध्य हैं, उनका दर्शन तो वहाँ जाने से मिल जाए। और ये सौभाग्य हमको मिलेगा, लोग कहेंगे ये अक्रूर जी ले आए और तब ये कंस का निधन हुआ, इसलिए हमारे लिए अच्छा है। ऐसा सोच करके उसके कहने से वहां जाकर के नंद बाबा से मिले और नंद बाबा से मिल करके नंद बाबा ने उनकी सारी व्यवस्था की। बलदेव जी उनसे मिले, बलदेव जी ने बड़ा आतिथ्य किया। उस समय तब बड़े हो गए हैं ना, कुछ बड़े हो गए, अब समझदार लोग हो गए, इसलिए इनको बैठाया। ये इनके हाथ जोड़ करके इनके लगते हैं कुछ चाचा जी लगते हैं, इनके चाचा जी लगते हैं, किंतु फिर भी उनको प्रणाम कर रहे हैं। और बलदेव जी ने इनका हाथ दोनों पकड़ करके अभिवादन करके इनको बैठाया, बड़े अच्छी तरह से बातचीत किया और इनके पैर दबवाए और खिलाया पिलाया। जबकि ये सब हो गया तो नंद बाबा भी उनसे थोड़ी सी बात किए, इसके बाद में नंद बाबा जी चले गए सोने के लिए, आप कल बातचीत कर। और ये दोनों बच्चों को एकांत में पा करके और उनसे बातचीत करें। ये देखो तुम्हारे मैया बाप को पहचानते हो? मैया बाप नंद जी हैं और यशोदा जी हैं। नहीं ये भूल जाना, तुम्हारे मैया बाप हैं वसुदेव जी और देवकी, और तुम्हारे लिए जेलखाना में उनको बंद किया और इतना कष्ट दे रहा है। इस विषय को सब लोग नहीं जानते, हम लोग जानते हैं जो विशेष लोग, इसलिए उनको जेल में बंद कर दिया। उनके सब लड़के तुम्हारे भाइयों को मार डाला और उनको अभी तक जेल में बंद रखा है और उनको मार डालने की रोज धमकी देता है। यदि कल तुम नहीं गए तो कल समझ लो जो उनका अंतिम दिन है उसको खत्म। अब तुम लोग समर्थ हो, आप जगत के ईश्वर हैं, आप इच्छा करने से वो कंस मारा जाए, मैं जानता हूं इस बात को, इसलिए आप लोग चल करके कल ही कंस का वध कर। ऐसे सब रात भर प्ररोचना देते रहे और ऐसी बात कहते रहे जिसे कि इनको क्रोध हो जाए। बलदेव जी को और कृष्ण को सचमुच में हमारे भले ही पिता माता न हो, किंतु बलदेव जी के तो पिता माता हैं और उनको इतना कष्ट देता है। बलदेव जी हमारे सखा हैं, हमारे भाई हैं, इसलिए हमको जरूर चलना चाहिए। दोनों भाई चले, रात में ही स्थिर हो गए। सवेरे नंद बाबा जी इनकी बातों को सुनकर के घोषणा कर ब्रज में चारों तरफ में घोषित हो गया कि अब आज ही सवेरे में कृष्ण और बलदेव को लेकर के अपूर्व भी जाएंगे। नंद बाबा भी अपने साथियों को लेकर के वहाँ पर जाएंगे और फिर वहीं पर रंगशाला देखेंगे और अपना वार्षिक कर भी दे आएंगे और लेकर के लौट। गोपियों को मालूम हुआ, कृष्ण में जिसका जितना अधिक प्रेम है उतना ही उनके लिए दुखी हुआ। इन लोगों को भी दुख है जो कृष्ण जा रहे हैं, किंतु किसी ने अनुमान ये नहीं किया कि कृष्ण वहीं पर आ सकते हैं, किंतु गोपियों ने अनुमान किया। इन बूढ़ों की अकल खराब हो गई, इतने बूढ़े हैं कोई भी मना नहीं कर रहा, और जो नंद बाबा इत्यादि हैं जो बूढ़े अभी नहीं हुए हैं ये लोग भी जाने के लिए तैयार देखते हैं, सखा भी इनके साथ में जाने के लिए तैयार है। इनको ये पता नहीं कि हो सकता है हम तो गंवारू लड़कियां हैं और वहां पर बड़ी शिक्षित पढ़ी लिखी बुद्धिमान और सब प्रकार से रूपवती साज श्रृंगार करने में थे, वहाँ की जो लड़कियाँ होंगी ये इनसे मिले, मिल करके उनके बसी इस तरह से फिर लौटेगा कि नहीं कोई ठीक नहीं, इसलिए बड़ी दुखी हो गई। उन्होंने यशोदा जी को बहुत से उलाहना दिए, जब देखा जब कोई नहीं उनको मना कर रहा तो खुद ही ये वहां से चली और कृष्ण से ये बोलने के लिए तैयारी। ये लोग नहीं कहेंगे, एक कोई कह रही है सखी देखो हम लोग अभी जाएंगे तो यह बात छिपी हुई थी कि हम लोग उनको प्रेम करते हैं कृष्ण, अब तो सभी लोग जान जाएंगे ये सब नहीं यार, वो इतना प्रेम है कि ये जा रहे हैं तो ये रो रही है और इनको जाने नहीं देती, तो ये बात व्यक्त हो जाएगी। दूसरे का तो व्यक्त हो जाएगी तो कर करके हमारा क्या जाएगा, वैसे तो हमको यदि चले जाएंगे तो वैसे ही तो मर जाना है, हम लोग जीवित नहीं रह सकते। तो बात व्यक्त हो और ना हो, या तो ये रह जाएंगे तो हम लोग तो जीवित रहेंगे और यदि चले गए तो हम लोग मर ही जाएंगे, तो फिर कहने सुनने वाला कोई रह नहीं जाएगा, और यदि यहाँ रहेंगे तो हम लोग जीवित रहेंगे। इसलिए किसी भी हालत में हम लोग चल करके यदि नहीं मानते हैं हाथ पकड़ लेंगे नहीं जाने देंगे, उनके कपड़े पकड़ लेंगे नहीं जाने देंगे, रथ को भी नहीं जाने देंगे, जैसे तैसे उनको हम मना कर देंगे। उसी समय में ये कह रही हैं मन ही मन में गोपियां कह रही हैं, अहो विधाता भवन क्वचित दया, हे विधाता तुमको कहीं दया नहीं है, क्यों विधाता को क्यों कर रही है, जिसने हम लोगों को मिलाया वही जो मिलाया वही अब हम लोगों को अलग कर रहा है, इसलिए दूसरा इसमें कोई दाई नहीं है, दूसरे किसी का हाथ नहीं, हम लोगों का ऐसा ही है भगवान की इच्छा से या काल के प्रभाव से हम एक साथ परिवार में 10, 20, 25 आदमी एकत्रित रहते हैं और फिर काल के प्रभाव से फिर हम लोग अलग 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 अलग। अभी बंगाल में या पाकिस्तान में, हिंदुस्तान पाकिस्तान में परिवार के परिवार कितने मर गए, कितने बिछुड़ गए जो अभी आज तक परस्पर नहीं मिले। ऐसे ही जो आदमी मर जाता है फिर हम लोगों के परिवार में फिर आकर के फिर मिलेगा, कोई गारंटी है? कोई कुछ नहीं। जैसे कि नदी में बाढ़ आती है और एक जगह का मिट्टी कट फट करके और एक जगह टापू बन जाता है और फिर वही कट करके न जाने कहां कहां चला जाता है। अभी बंगाल में एक बाढ़ है, एक स्कूल में बहुत से लोग, कोई उत्सव हो रहा था, एकत्रित हुए, 400-500 लोग थे, वो वहीं पर रह करके और उत्सव मना रहे थे। इतने में ही कितनी बड़ी जोर से बाढ़ आई, घिर गए, पानी बढ़ने लगा तो छत पर सभी लोग चले गए 400-500 बाद, और वो बाढ़ इतनी भयंकर हुई घर को गिरा करके छत समेत बह चला। जब बह चला ना, अब सब लोग त्राही त्राही करने लगे, उसमें एक आदमी भी एक आदमी से मिला फिर न जाने कहाँ 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 सब चले गए, कोई मर गए, कोई कहाँ गए कहाँ गए। इसी तरह से ये संचार चक्र है, इसको करने वाला कौन है? इसलिए दूसरा कोई नहीं है, या तो हमारा अपना कर्म है, इसी को कहते हैं काल। तो ये काल के द्वारा ये कभी कभी मिलते हैं और कभी अलग हो जाते हैं। गोपी ने सोचा अभी कल हम लोग मिले और आज हम लोग बिछुड़ रहे हैं, इसमें किसका दोष है? हम लोग तो चाहते हुए भी नहीं अलग अलग हो रहे हैं, हम लोग मिलना भी नहीं चाहते थे किंतु भगवान की इच्छा से, काल की इच्छा से हम लोग मिल गए। इसीलिए कह रहे हैं अहो विधाता, आप उस संसार की रचना करने वाले हैं, आप ही संसार को नियमित करते हैं, आपको तनिक दया नहीं है? तनिक भी दया नहीं? संयोज मित्र प्रणय नदी, इन देहियों को आपने मित्रता के द्वारा और प्रणय के द्वारा संयोग। यहाँ पर मित्र माने सख्य, सख्य भाव से हम लोग को सखियों के रूप में और सखा के रूप में हमको आपसे मिलाया। और प्रणय न, प्रणय के द्वारा और भी जोड़ दिया है, दोनों के प्राण एक कर दिए प्रणय न। और मिलने के बाद में हम लोग अभी अकृतार्थ रहे, अकृतार्थान अकृत अर्थ अर्थान, मिलने में क्या होगा? प्रेम से रहेंगे ना, परस्पर परस्पर को प्रेम करके उसमें सुख का अनुभूति करेंगे। ये आपने होने नहीं दिया पूरा, उसके पहले ही क्या कर दिया? वियु नक्ष पार्थकम, अलग अलग कर दिया हम दोनों को, कृष्ण को हमसे छीन लिया। और अपार्थकम, अपार्थकम माने क्या? अप अर्थकम, पार्थकम माने अलग करना नहीं, अप
अर्थकम,
अर्थकम अर्थ को काट दिया। मेरी जो अभिलाषा थी, हम लोगों की अभिलाषा थी,
प्रयोजन
था, प्रयोजन जो था, क्या प्रयोजन था? हम लोग मिल करके परस्पर सुखी रहेंगे, यही हमारा प्रयोजन था। तो ये प्रयोजन को ही आपने नष्ट करके व्यर्थ कर दिया। विचेष्टितम, ये आपकी जो चेष्टा है, आपकी चेष्टा ने ही सब कुछ व्यर्थ कर दिया। कैसे? यदि किसी को पता हो ये विधाता, विधाता माने यहाँ पर ब्रह्मा ऐसा ही करता है, ऐसे ही मिला करके फिर विजुक्त कर देता है और इच्छा पूर्ण नहीं होने देता, प्रयोजन सिद्धि नहीं होने देता, तो कोई प्रीति करेगा तो संसार अपने आप नष्ट हो जाएगा। प्रहलाद चरित्र में यहाँ पर हिरण्याक्ष का वध हुआ, उसके बाद में उसकी स्त्रियां जो रो रही हैं, तो वह ऐसे ही रो रही हैं और कह रही हैं आपने ये क्या किया, मूर्खों जैसी बातें आपने क्यों की। अभी ये छोटा सा बच्चा ने वो थे और हमको उनसे अलग कर दिया, वो मर गए हम अलग हो गए। यदि आपकी यही रीति है तो लोग समझेंगे ये हमारा बेटा भी चला जाएगा, पति चला जाएगा, तो किसी के साथ में कोई प्रेम नहीं करेगा, तो ये आपका संसार नष्ट हो जाएगा, ये आपको पता नहीं। किंतु आपको ये ज्ञान नहीं, इसलिए आपकी चेष्टाएं हैं मूर्खों की भांति या बालक की भांति, बाल चेष्टा मात्र है, आपका संसार ऐसी तरह से नष्ट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर ये भी कारण है कि हम लोगों का जो प्रयोजन था मिलाया आपने, मिलाने के बाद में विचेष्टितम आपकी ये जो चेष्टा है, संसार की रचना करते हैं, उनसे किसी को मिलाते हैं और मिला करके अभी अतृप्त अवस्था में इनको अलग अलग कर देते हैं, ये आपकी चेष्टा है। अर्भक चेष्टितम बाल चेष्टा है, इसे तो संसार सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए कृष्ण को देख करके ये कार्य क्यों भविष्य के लिए, ये हमको छोड़ करके चले जाएंगे फिर वहां से लौट करके नहीं आएंगे, इसलिए ये ऐसे ही साधक क्या करेगा, साधक इसके द्वारा सीखेगा। इनके पीछे वाला जो वियोग है ऐसा ही वियोग हम लोगों के अंदर भी हो, भगवान के लिए ऐसे ही तीव्र वियोग हो और भजन यदि करें तो भगवान पाए जा सकते हैं, अन्यथा भगवान ऐसे नहीं पाए जा सकते। जस्यानुराग ललित स्मित बलु मंत्र लीला बलोक परिरंभ नराश गोष्ठ्या नीतास्मन खननीय खनदा विनातम गोप्या कथम नतिद्रे मतमो दुरस्तम। जस्यानुराग ललित स्मित बलु जस्यानुराग ललित स्मित बलु मंत्र अंत में ये कह रहे हैं, जस्यानुराग कृष्ण का हमारे प्रति उनका यह स्मरण होने लगा, राश का प्रसंग उनके आंखों में फूट पड़ा और वो चिंता करने लगे। जस्यानुराग ललित स्मित राश के समय में कृष्ण का हमारे प्रति ऐसा अनुराग कि अनुराग के द्वारा बंसी के द्वारा हमको बुलाया अपने पास, और उस समय उनकी जो कथाएं थी बातें थी ऐसे प्रेम भरी थी कि तुम लोग घरों को लौट जाओ। वो मंद मुस्कान के साथ में कह रहे हैं जिसका द्वार तक है, गोपियां समझ ना सकी द्वार तक माने जाएं कि ना जाएं ये ठीक से नहीं करें, करें ये जाओ किंतु हंस करके क्यों कर रहे हैं और हमारे तरफ में इस प्रकार से देख करके क्यों कर रहे हैं। इसलिए वो समझ नहीं सकी कि इनका मतलब क्या है, इसलिए बहुत कृष्ण बहुत कुछ कहे तब तक वो प्रतीक्षा करके देखती रही, कभी नहीं आया ना तो गोपियां ही परीक्षा कृष्ण को करने लगी, अच्छा तो देखे जी इनका मतलब क्या है, तब फिर उन्होंने कहा। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं जस्य अनुराग ललित स्मित, जिनका अनुराग ललित स्मित राज के समय में, ललित स्मित माने ललित माने मनोहर, मनोहर ललित एक और भी है जहां मुखों की मुख का चारुता हो, मंद मुस्कान हो, आंखों में कुछ भाव हो, और प्रत्येक अंगों की कोमलता को उसके द्वारा व्यक्त किया है, तब इसको ललित कर ललित का ये मुख की चालता हो, अत्यंत मुख की भंगी बड़ी सुंदर हो, अंग भी खूब कोमल हो और अंगों से भी कुछ ऐसा मालूम पड़ता है जिसके अंदर में कुछ भावना है, आंखें भी मानो कुछ कह रही हैं, भौहें कुछ कह रही हैं और देखने वाले को सबको आकर्षित कर रहे हैं, उनका प्रत्येक चीज बड़ा मनोहर सुंदर, तो इसको कहते हैं ललित। इसीलिए ललित त्रिभंगी भी है, ललित चावनी है, ललित उनका सब कुछ है। उसमें ललित स्मित, स्मित माने मंद हास्य, बलगु मंत्र माने बलगु माने भी परम सुंदर मोहन, और मंत्र माने क्या बातें वार्तालाप परस्पर इतना मनोहर जो हम लोगों को आकृष्ट करते, क्यों आई यहां रात में, क्यों आई, आने का मतलब क्या, तो जब कुछ नहीं बोली तो जब पूर्णिमा का चांद देखने के लिए आई, नदी देखने को आई तो अभी कुछ नहीं बोली, पुष्प चयन करने के लिए यहाँ पर आ गई, इस तरह से बातें कर रहे हैं। और भी 32वें अध्याय में गोपियों से ऐसे गोपियां भी प्रत्युत्तर कर रही हैं, आपका प्रेम कैसा है, बनियागिरी का आपका प्रेम है कि कैसा प्रेम है, साधु प्रेम है, आपने जो प्रेम करता है उसके बदले में प्रेम करते हैं कुछ, जो प्रेम नहीं करने पर भी प्रेम करते हैं, और कुछ चाहे प्रेम करो ना करो कभी नहीं, आप इसमें से कौन है, कृष्ण ने कहा जैसे मैं इनमें से कोई नहीं हूं, किंतु किसी न किसी में है, ये सब चीजें उनमें है, जो प्रेम नहीं करता उसको करते हैं कि नहीं, तो करते हैं, जो करे ना करे वो सबको भी प्रेम करते हैं, ऐसा भी है, यही उन्होंने अंत में दिखलाया। तो इस प्रकार से बलगो मंत्र इसको कहते हैं, अपने बातों के द्वारा प्रेम भरी बातों से जो दूसरों को आकर्षित कर लेता है, आपने वो आकर्षित हम लोगों को किया, लीला बोलो लीला पूर्वक हमारे तरफ में देखना, परिरंभन परिरंभन में हाथों में हाथ लगा करके नृत्य करना इत्यादि सब, राष्ट्र गोष्ठियां राष्ट्र की गोष्ठी में ये सब आपने किया, उस समय हम लोग नीताश्व नखनमी व खनदा बिना, उस समय में ये खनदा, खनदा माने उत्सव देने वाली जो रात थी, खनदा माने वह रात जिसमें आनंद दे, यह राष्ट्र का की रात जो थी वो खनदा थी, किंतु वो तो खनदा थी खनमिव, खण में ही मात्र में ही ब्रह्मा की एक रात लाखों वर्ष, इसी तरह से गोपियों को मालूम नहीं हुआ खण भर में ही बीत हो गई। अब वही खनदा जो आने वाली है आज के बाद में, आज की रात खनदा माने जो अब चली गई क्षण में, अब वो खनदा उत्सव रहित तो हो गई, और वही रात को अब हम आपके बिना ताम तंग बिना आपके बिना हम कैसे कटाएं, ये चिंता करते करते वो आकुल हो गए। गोप्य कथम नति करें तमो दुरंतर, आपका विरह रूपी जो अंधकार है घोर अंधकार, ये घोर रात अब खन ही एक कल्प के समान हो गया, उस रात को अब हम कैसे बिताएंगे आपके बिना, कथम अब बतलाओ। इस प्रकार से अत्यंत विरह में इसी प्रकार से भक्त को ऐसी भावना होगी, ये सब कब मिलेंगे, एक क्षण भी कल्प के समान जब बीतने लगेगा, जैसे कि बिल्ल मंगल इत्यादि को हमारे गोस्वामी लोगों को ऐसा पता, ऐसे किसी दशा में होगी उसी समय में भगवत दर्शन संभव है, इसके पहले नहीं। अंततः दुख तो होना चाहिए, ये भगवान के बिना हम दुखी हैं, भगवान का भजन ठीक से नहीं होता, इसलिए उसके लिए इतना यद्यपि संभव नहीं है, किंतु कुछ तो जरूर होना चाहिए। फिर भक्त विनोद ठाकुर जी कहते हैं गोस्वामियों का वाक्य, जदा जातो गोपी हृदय मदनो नंद सदना मुकुंदो गांधिन्या तनम अनुरुंधन मधुपुरी तदा आख्यान चिंता सरति धन गुरुणा परिचय रागाधायन बाधामय पयसी राधा दिगणि। करे गोस्वामी वाक्य को करे हैं कि जदा जातो, जब हरि कृष्णचंद्र जी नंद नंदन नंद सदन से नंद गांव से नंद भवन से निकल करके मधुपुरी में चले गए, ब्रजछाड़ी गेला मधुपुरी मधुपुरी को चले गए, अक्रू सहित तो जबे गेला तबे राधा की रहिनी घन घूर्णित रंगिनी चिंता जले अगाधे पड़ जाए। उस समय में अगाधायां बाधामयं पयसी राधा विरहिणी, राधा विरहिणी अगाध विरह के समुद्र में वो डूब गई। इन श्लोकों को याद करके